आमाल 25वां बाब। पस फीस्तुस सूबे में दाखिल होकर 3 रोज के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया, और सरदार काहिनों और यहूदियों के रईसों ने उसके यहाँ पौलुस के खिलाफ फरियाद की और उसकी मुखालिफत में ये रियायत चाही कि वो उसे यरूशलेम में बुला भेजे, और घात में थे कि उसे राह में मार डालें। मगर फीस्तुस ने जवाब दिया कि
पौलुस तो कैसरिया में कैद है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। बस तुम में से जो इख्तियार वाले हैं वो साथ चलें, और अगर उस शख्स में कुछ बेजा बात हो तो उसकी फरियाद करें।
वो उनमें 8-10 दिन रहकर कैसरिया को गया, और दूसरे दिन तख्ते अदालत पर बैठकर पौलुस के लाने का हुक्म दिया। जब वो हाजिर हुआ तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे वो उसके आसपास खड़े होकर उस पर बहुतेरे सख्त इल्जाम लगाने लगे, मगर उनको साबित न कर सके। लेकिन पौलुस ने ये उज्र किया कि
मैंने ना तो कुछ यहूदियों की शरीयत का गुनाह किया है, ना हैकल का, ना कैसर का।
मगर फीस्तुस ने यहूदियों को अपना एहसानमंद बनाने की गरज से पौलुस को जवाब दिया,
क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि तेरा ये मुकदमा वहां मेरे सामने फैसल हो?
पौलुस ने कहा,
मैं कैसर के तख्त अदालत के सामने खड़ा हूँ, मेरा मुकदमा यहीं फैसल होना चाहिए। यहूदियों का मैंने कुछ कसूर नहीं किया, चुनाचे तू भी खूब जानता है अगर बदकार हूँ या मैंने कत्ल के लायक कोई काम किया है तो मुझे मरने से इनकार नहीं। लेकिन जिन बातों का वो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, अगर उनकी कुछ असल नहीं तो उनकी रियायत से कोई मुझको उनके हवाले नहीं कर सकता। मैं कैसर के यहाँ अपील करता हूँ।
फिर फीस्तुस ने सलाहकारों से मसलहत करके जवाब दिया कि
तूने कैसर के यहाँ अपील की है, तू कैसर ही के पास जाएगा।
और कुछ दिन गुजरने के बाद अग्रिप्पा बादशाह और बर्निके ने कैसरिया में आकर फीस्तुस से मुलाकात की, और उनके कुछ अरसे वहां रहने के बाद फीस्तुस ने पौलुस के मुकदमे का हाल बादशाह से ये कहकर बयान किया कि
एक शख्स को फिलिप्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार काहिनों और यहूदियों के बुजुर्गों ने उसके खिलाफ फरियाद की और सजा के हुक्म की दरख्वास्त की। उनको मैंने जवाब दिया कि रूमियों का ये दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रियायतन सजा के लिए हवाले करें जब तक के मुद्दा अलय को अपने मुदाइयों के रूबरू होकर दावे के जवाब देने का मौका न मिले। बस जब वो यहां जमा हुए तो मैंने कुछ देर न की, बल्कि दूसरे ही दिन तख्त अदालत पर बैठकर उस आदमी को लाने का हुक्म दिया। मगर जब उसके मुदाई खड़े हुए तो जिन बुराइयों का मुझे गुमान था उनमें से उन्होंने किसी का इल्जाम उस पर न लगाया, बल्कि अपने दीन और किसी शख्स यसू की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था, और पौलुस उसको जिंदा बताता है। चूंकि मैं इन बातों की तहकीकात की बाबत उलझन में था, इसलिए उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम में जाने को राजी है कि वहां इन बातों का फैसला हो? मगर जब पौलुस ने अपील की कि मेरा मुकदमा शहंशाह की अदालत में फैसल हो, तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं, वो कैद रहे।
अग्रिप्पा ने फीस्तुस से कहा,
मैं भी उस आदमी की सुनना चाहता हूं।
उसने कहा कि
तू कल सुन लेगा।
बस दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बर्निके बड़ी शान और शौकत से पलटन के सरदारों और शहर के रईसों के साथ दीवान खाने में दाखिल हुए तो फीस्तुस के हुक्म से पौलुस हाजिर किया गया। फिर फीस्तुस ने कहा,
ऐ अग्रिप्पा बादशाह और ऐ सब हाजरीन, तुम इस शख्स को देखते हो जिसकी बाबत यहूदियों की सारी गिरोह ने यरूशलेम में और यहां भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे अर्ज की कि इसका आगे को जीता रहना मुनासिब नहीं। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि उसने कत्ल के लायक कुछ नहीं किया, और जब उसने खुद शहंशाह के हां अपील की तो मैंने उसको भेजने की तजवीज की। उसकी निस्बत मुझे कोई ठीक बात मालूम नहीं कि सरकारे आली को लिखूं। इस वास्ते मैंने उसको तुम्हारे आगे اور خاص کر اے اگریپا بادشاہ تیرے حضور حاضر کیا ہے تاکہ تحقیقات کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات نکلے، کیونکہ قیدی کے بھیجتے وقت ان الزاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔